मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का सातवां अध्याय चल रहा है, इसमें सबसे पहले निश्चयाभासी का प्रकरण चल रहा है। सातवें अध्याय में जिनागम का अभ्यास करने के बाद भी जो गलतियां रह जाती हैं, जो त्रुटियां रह जाती हैं, जो कमियां रह जाती हैं, उनका दिग्दर्शन हो रहा है। वो कहते हैं सबसे बड़ी कमी तो ये है कि जिनागम में जितना भी कथन है वो सब निश्चय और व्यवहार की शैली में है। ये निश्चय और व्यवहार का सही अर्थ समझता नहीं है, इसकी वजह से ये सारी गलतियां होती हैं। अब सबसे पहले कह रहे हैं कि निश्चय नय का सही अर्थ नहीं समझने से किस प्रकार की गलतियां होती हैं, तो उसने कल बताया था कि सबसे पहले तो इनका मैं सिद्ध के समान हूं, क्योंकि निश्चय नय से भगवान आत्मा सिद्ध के समान शुद्ध है, परम पवित्र है, ऐसा शास्त्रों में कहा है। अब सिद्ध में दो विशेषताएं होती हैं कि एक तो वे केवल ज्ञान के धनी हैं और दूसरे वो संपूर्ण राग द्वेष मोह से रहित हैं, यानी वो वीतरागी और सर्वज्ञ हैं। तो ये मानता है कि मैं सिद्ध के समान हूं, उसका अर्थ हुआ कि मैं केवल ज्ञानी हूं और मैं वीतरागी हूं। तो इस तरह राग द्वेष के होने पर भी अपने को वीतरागी मान लेता है, और केवल ज्ञान नहीं होने पर मति ज्ञान आदि विद्यमान है तो भी अपने को केवल ज्ञान वाला मान लेता है। ये गलती सबसे पहले निश्चयाभासी की होती है, जिसमें केवल ज्ञान यदि मान लेता है तो क्या दोष है, इसकी चर्चा कल हो चुकी है। केवल ज्ञान यदि है तो फिर मति ज्ञान आदि क्यों तेरे पास है? मति ज्ञान और केवल ज्ञान तो एक साथ हो नहीं सकते हैं। फिर तो उसने जो तर्क प्रश्न किए थे कि भाई ये तो केवल ज्ञानावरणी कर्म है ना, और ऊपर ऊपर से इसने ढक रखा है, आत्मा के प्रदेशों में तो केवल ज्ञान विद्यमान है, जैसे सूरज को बादल देते हैं ऐसे ही ज्ञानावरणी कर्म ने केवल ज्ञान को ढक रखा है। तो पंडित जी ने उसका जवाब दिया था कि नहीं, ऐसा नहीं है, केवल ज्ञान उस समय है ही नहीं, क्योंकि केवल ज्ञान यदि होता है तो वज्र पटल भी सामने आ जाए तो भी उसे ढक नहीं सकता है और उसके पार की बात को वो जान लेता है। तो ये जरा से कर्मों के ढकने से और वो कैसे होता है? तो आवरण शब्द क्यों लिखा फिर? तो आवरण का तो अर्थ है कि बस वो नहीं है, उसके निमित्त से नहीं है। वो कहते इसी अर्थ में आवरण लिखा, जैसे प्रत्याख्यानावरण है, इसका उदाहरण दिया प्रत्याख्यानावरण है, ऐसे केवल ज्ञानावरण है। तो वो केवल ज्ञान को एकदम स्पष्टता माने, जब है वो शक्ति की अपेक्षा माने केवल ज्ञान प्रकट होने की शक्ति है। इस भगवान आत्मा में निगोद में भी सर्वज्ञत्व शक्ति है, वो सर्वज्ञत्व शक्ति का जब पूर्ण निर्मल प्रणमन होगा तब केवल ज्ञान होगा। तो एक तो ये भूल है, तो इसके बारे में उन्होंने अपन ने सारा विस्तार से बहस इसमें अपन कल कर चुके हैं। दूसरी कि वो अपने को वीतरागी मान लेता है, जबकि वर्तमान में राग द्वेष स्पष्ट दिखाई देते हैं, और ये कहता है कि शास्त्र में तो लिखा है कि आत्मा में तो राग द्वेष होती नहीं है। तो देखो पेज नंबर 195 निकालो, देखो जैसे शीतल स्वभाव के कारण उष्ण जल को शीतल मानकर पानादि करे तो जलना ही होगा, उसी प्रकार केवल ज्ञान स्वभाव के कारण अशुद्ध आत्मा को केवल ज्ञानी मानकर अनुभव करे तो दुखी ही होगा। तो पानी का उदाहरण देते हैं कि पानी का स्वभाव ठंडा है, और जब वो पानी खोल रहा है तब भी उसका स्वभाव तो वास्तव में ठंडा है, क्योंकि उसी पानी को उस अग्नि पे डालें तो वो खोलता हुआ पानी भी अग्नि को बुझाता ही है, अग्नि को जलाता नहीं है। ऐसे ही भगवान आत्मा केवल ज्ञान स्वभाव ही है, लेकिन कोई आदमी उस खोलते हुए पानी को गर्म है ही नहीं, ठंडा है ऐसा मानकर पिए तो क्या होगा, अवश्य जल जाएगा। ऐसे ही वर्तमान में तो जो अज्ञान है, अल्प ज्ञान है, और उसे केवल ज्ञान मान करके यदि व्यवहार करेगा तो निश्चित रूप से वो दुखी होगा। इस प्रकार जो आत्मा का केवल ज्ञानादि रूप अनुभव करते हैं वे मिथ्या दृष्टि हैं। कितना साफ लगा। अब राग आ जाए, अब दूसरा पॉइंट है वो। पहला ये केवल ज्ञान की चर्चा हुई, तथा रागादिक भाव अपने को प्रत्यक्ष होने पर भी साफ क्रोध मान माया लोभ दिखाई दे रहे हैं, भ्रम से आत्मा को रागादि रहित मानते हैं। जैसे सब प्रत्यक्ष विरुद्ध बातें हैं जो निश्चयभाषी में देखने में आती हैं। केवल ज्ञान है नहीं और केवल ज्ञान से रहित मानता है, रागादि हैं रागादि से रहित मानता है, पर का देखना जानना स्पष्ट दिखाई देता है तो भी आत्मा पर को देखता ही नहीं है। ये सब निश्चय नहीं के कथन है ना शास्त्र में, और उनका एकांत पकड़ करके वो ऐसी बातें कहता है जो बिल्कुल लोक में विरुद्ध है, प्रत्यक्ष विरुद्ध है, एक साधारण आदमी के गले में भी नहीं उतरे। फिर तर्क ये है कि भाई शास्त्र में लिखा है, तो पंडित जी यही तो कहते हैं शास्त्र की क्या अपेक्षा है उसका तुम्हें पता नहीं है। वो तो ये कह रहे हैं कि वो पानी जो गर्म है, उस गर्म पानी को खोलते हुए पानी को गर्माई को बाद कर दो और फिर देखो। गर्माई को बाद कर दो माने वस्तु में से तो निकलेगी नहीं, वो अपने ज्ञान में बाद कर दो, गौण कर दो और फिर देखो तो ठंडा है, ऐसा है। अब इसको तो समझता नहीं, वो बिल्कुल ठंडा ही मान लेता है। ऐसे ही वो कहते हैं कि वर्तमान में जो राग देश मोह हैं, इन राग देश मोह को तुम अपनी दृष्टि में बाद कर दो, गौण कर दो, तो अंदर में भगवान आत्मा बीतरागी बैठा है, ख्याल में ना। तो वो ये गौण करने का अर्थ तो समझते ही नहीं है, वो तो बस वो तो राग है ही नहीं, राग तो है ही नहीं, राग तो राग जुदा है और आत्मा जुदा है। तो राग को जुदा शास्त्र में लिखा है ना, आसव तत्व तो जुदा है और आत्मा तत्व तो जुदा है। तो वो कहते वो तो इसलिए लिखा है कि वो राग का अभाव करना है। यदि राग और आत्मा को एक ही मान लेंगे तो राग का अभाव करने से आत्मा का अभाव हो जाएगा, और कोई आदमी आत्मा का अभाव तो करना चाहता नहीं। एक नियम है कि हमें कोई बीमारी है तो डॉक्टर हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि तुम अलग हो और बीमारी अलग है। इस वो काय के लिए, सिर्फ इस बात के लिए कि बीमारी नष्ट हो सकती है, जा सकती है और तुम कायम रहोगे। हम जो तुम्हें दवाई देंगे उससे बीमारी नष्ट होगी, तुम नष्ट नहीं होगे। कि जहर है, कि हां जहर है, लेकिन ये बीमारी को नाश करने वाला जहर है, इसे तुम्हारा कोई बिगाड़ नहीं होगा। तो हम उस दवाई को खाते हैं कि नहीं खाते हैं। लेकिन यदि डॉक्टर ये कहते कि बीमारी और तुम तो एक ही हो गए, अभेद हो बिल्कुल, तो इसका मतलब है बीमारी नष्ट होगी तो हम भी नष्ट होंगे। कि भाई वो जहर जाएगा तो बीमारी को नष्ट करेगा, तुम्हें कैसे छोड़ देगा। तो फिर कोई दवाई खाएगा, हम बीमारी अच्छे जितने दिन है बीमारी में ही निकाल लेंगे, लेकिन हमें दवाई नहीं चाहिए। तो ये दोनों की भिन्नता का ज्ञान कराने के लिए कि राग अलग है और आत्मा अलग है, जिससे ऐसा भी उपाय है कि राग का नाश हो जाए और आत्मा बिल्कुल को कोई जख्म भी नहीं हो, आत्मा को कोई तकलीफ नहीं हो, आनंद आनंद सुखी हो जाए। इसके लिए राग जुदा और आत्मा जुदा बताया। वो ये मान लेगा जुदा ही है तो फिर मेरे को क्या लेना देना है। अरे राग को दूर करने का पुरुषार्थ तो तेरी पर्याय में होना है, जिसके लिए उपदेश दिया जाता है, जिसके लिए सारी जनवाणी लिखी गई है। जब तूने ये मान लिया कि राग बिल्कुल जुदा है, समझना राग बिल्कुल जुदा है, तो फिर तुझको उसे नाश करने का भी जरूरत क्या है। देखो मैं आपको थोड़ी बात बताता हूं यहां एक उदाहरण देकर के। शास्त्र में ये आता है कि शरीर जुदा है, स्त्री पुत्र जुदे हैं, राग जुदा है, आता कि नहीं आता, और सबको एक सी जुदाई का ही तर्क दिए जाते हैं, तुम बिल्कुल वास्तव तत्व है, तुम जीव तत्व है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि एक तो तुम में राग है वो, और एक मेरे में राग है, तो मेरे से ये दोनों राग जुदे हैं कि नहीं? कि दोनों जुदे हैं, लेकिन दोनों एक से जुदे हैं कि कुछ फर्क है? तो क्या फर्क है कि तुम्हारे राग के कारण मुझे कोई कर्मबंध होने वाला नहीं है, और मेरे राग के कारण मुझे कर्मबंध होने वाला है। तो तुम्हारा राग मेरे से जुदा है इस बात में, और मेरा राग मेरे से जुदा है इसमें कुछ अंतर तो है, इस अंतर को भी जानना चाहिए। हम भले ही ये नहीं कहें कि वो हमारा राग हमारे से कुछ कम जुदा है, पूरे जुदा माने, लेकिन तो भी उस जुदाई में और इस जुदाई में कोई फर्क है। क्यों? क्योंकि ये राग के निमित्त से हमें आत्मा के कर्मों का बंध होता है, और तुम्हारे राग के निमित्त से हमें आत्मा का कर्म बंध नहीं होता। ये अंतर जानना क्यों जरूरी है? हम जान लें कि दोनों जुदे हैं, झगड़ा खत्म। तो ये अंतर जानना इसलिए जरूरी है कि तुम्हारे राग का हमें कुछ नहीं करना, भले ही ज्ञान का गेय बन जाए तो बन जाए, नहीं बने तो नहीं बने, हमें कोई लेना देना नहीं है उससे, क्योंकि उससे हमारा कोई विकार सुधार नहीं है। लेकिन ये हमारा राग है, इससे तो हम अनंत दुखी हैं पर्याय में अभी, और आगामी कर्म बंधने वाला है, और इस राग का तो हमें नाश करना है। तो ऐसे सर्वथा जुदा मान लेंगे जैसे तुम्हारा राग है, तो फिर उसके नाश का उपाय यानी मुक्ति के मार्ग में हम क्यों चलेंगे, उसका उद्यम हम क्यों करेंगे? ये बात इसमें लिखी है। देखो ये पेज नंबर 197 में, दोनों विपरीत श्रद्धानों से रहत होने पर सत्य श्रद्धान होगा, तब ऐसा मानेगा कि ये रागादि भाव आत्मा का स्वभाव तो नहीं है, कर्म के निमित्त से आत्मा के अस्तित्व में विभाव पर्याय रूप से उत्पन्न होते हैं, निमित्त मिटने पर इनका नाश होने से स्वभाव भाव रह जाता है, इसलिए इनके नाश का उद्यम करना, इनके नाश का उद्यम करना है, और तुम्हारे राग के नाश का हमें उद्यम नहीं करना है। ये दोनों के अंतर हमने क्यों जाना? माने जुदा भी जानना, क्योंकि इसका हम नाश करेंगे तो हमारा आत्मा नष्ट नहीं होगा, इसके लिए जुदा जानना, और इसके नाश का हमें उद्यम करना है, इसलिए ये मेरी पर्याय में है और वर्तमान में दुख है और दुख रूप है, इसलिए तो मैं संसार में हूं, दुखी हूं, ये करना। तो एक तो ये जो निश्चयाभासी है वो राग को दूसरे के राग जैसा पृथक मान लेता है, समझ में ना, पृथकता तो जाननी, निश्चय ने ऐसे तो इसलिए पृथक कहा था कि तुम उसके स्वभाव नहीं जान ले, ख्याल में है ना, और इसने ये बात मान ली, इसलिए फिर वो निरुद्ध भी हो गया, इसलिए निश्चयाभासी निरुद्ध भी हो जाता है, ख्याल है। पंडित टोडरमल जी ने पुरुषाशीष उपाय के मंगलाचरण में जो छंद लिखा है उसमें इसका वर्णन किया है, को नये निश्चय से आत्मा को शुद्ध मान, भये हैं स्वच्छंद ना पिछाने निजे शुद्धता। कोई निश्चय ऐसे आत्मा को शुद्ध मान के स्वच्छंद हो गए हैं, माने उद्यम नहीं करते हैं, पुरुषार्थ नहीं करते हैं, कुछ करने की कोशिश नहीं करते हैं, और न पिछाने निज शुद्धता। शास्त्र में ये कहा था कि आत्मा शुद्ध है निश्चय ऐसे, तो उसका क्या अर्थ है वो इस बात को नहीं जानते हैं। फिर आप अभी आगे आगे बताएंगे आपकी शुद्धता का क्या अर्थ है ना, ये जो समय सार के कर्ता कर्म अधिकार जीवाजीव अधिकार के जो है ना अपने ख्याति में, वो अपनी इसी में आगे दिए हैं उद्धरण है, तो अभी देखो उसमें आएगा आगे के पेजों में, लेकिन जब आएगा तभी उसकी हम चर्चा करेंगे। वो आया ना कि पेज नंबर 199 पे, एस एव अशेष द्रव्यांतर भावेभ्यो भिन्नत्वेन उपासमाना शुद्धा इत्यपलभते, शुद्ध तो इसे कहते हैं, और दूसरे समस्त कारक प्रकृति प्रक्रियो तीर्ण निर्मल अनुभूति मात्र शुद्धा, मैंने शुद्ध का तो निश्चय नहीं कि शुद्ध का तो ये अर्थ है, जब ये प्रकरण आएगा तब अपन बात करेंगे। और वो उसने ये मान लिया कि दागा दिख रहे थे हूं, अब सुखचंद हो गया तो मेरे को कुछ करना ही नहीं है। जब वो कहता है नाश का उद्यम तुझे करना चाहिए, वो यदि ये सर्वथा जुदा मान लेगा तो फिर राग के नाश का उद्यम का कोई सवाल खड़ा नहीं रह जाता है। असली मुद्दे की बात यह है, इसलिए वो निरुद्यमी हो जाता है। निश्चयाभाषी का सबसे बड़ा जो दोष है वो निरुद्यमी होना है। बस मैं तो शुद्ध बुद्ध निरंजन निराकार हूं ऐसा विकल्प कर चिंतन करता रहता है और बस पड़े रहो, कुछ नहीं करना, क्योंकि अकर्ता हूं ना मैं तो। यहां प्रश्न, यदि यह कर्म के निमित्त से होते हैं तो कर्म का उदय रहेगा तब तक यह विभाव दूर कैसे होंगे, इसलिए इसका उद्यम करना तो निरर्थक है। उन्होंने निरर्थक क्यों कहा था, उद्यम करने की बात क्यों कही थी? तो देखो इस पेज नंबर 196 सबसे ऊपर समय सार कलश का एक उन्होंने उद्धरण दिया कि राग जन्मेन्द्रनी निमित्तताम परद्रव्यमेव कलयन्ति एतुते उत्तरंति नहि मोह भावनी शुद्ध बोध विदुरांध बुद्धया, कि जो शुद्ध बोध से विधुर हैं, विधुर माने समझते हो, जिसकी पत्नी मर जाती है उसे विधुर बोलते हैं, जिसका पति मर जाता है उसे विधवा बोलते हैं, क्यों जानते नहीं, माने जो विधवा तो धम माने होता है पति और उससे रहित, और धुर माने होता है पत्नी तो उससे रहित, इसे विधुर माने समझे ना पत्नी से रहित, तो कहते वे शुद्ध बोध से विधुर हैं, उनको शुद्ध आत्मा का ज्ञान से नहीं है, वो शुद्ध बोध विधुर और अंध बुद्धिया अंध बुद्धि वाले हैं, अंधे हैं, अंधे लोग हैं जो ऐसा मानते हैं कि राग की उत्पत्ति में कर्म का ही जोर है। मैं क्या करूं, कर्म के उदय के अनुसार होता है, कर्म ही जगा, कर्म ही सुला। वे कहना चाहते हैं कि तू अपनी जिम्मेवारी भी मान, वो राग जो तेरे में पैदा हुआ है वो तेरी पर्यायगत योग्यता के कारण हुआ है, तेरी पर्याय में तेरे से भूल हुई है, तेरे उपादान में गड़बड़ी हुई है, उसका जिम्मेवार तू है। तो अकेले निमित्त कोई मत मान, निमित्त है वो, हम नहीं कहते कि निमित्त नहीं है, वही बात उसने यहां प्रश्न में लगा दी कि आप ये कहते हो राग दूर करने का प्रयत्न करो, तो राग तो कर्म के उदय के निमित्त से होता है, हम क्या करें, और कर्म तो परद्रव्य है, उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, उसका निमित्त निमित्त संबंध तो पर के साथ में है, इसलिए हम क्या उद्यम करें। वो अपने आलस को पोसेगा और पंडित जी उसके आलस को यहां दूर करना चाहते हैं। निश्चयाभाषी का सबसे बड़ा जो दोष है वो आलसी हो जाना। देखो कि यहां प्रश्न, यदि कर्म के निमित्त से होते हैं तो कर्म का उदय रहेगा तब तक वे विभाव दूर कैसे होंगे, इसलिए इसका उद्यम करना तो निरर्थक है। वो यही कहेगा उद्यम करने से कोई फायदा नहीं है। उत्तर, एक कार्य होने में अनेक कारण चाहिए। वो पांच संवाद होते हैं ना, वो पंडित जी उनकी बात करते हैं कि ये नहीं कहते हैं कि नहीं निमित्त निमित्त से कुछ नहीं होगा, कर्म के उदय से कुछ नहीं होगा। ये पंडित जी की सबसे बड़ी विशेषता है कि वे नकारते नहीं है, हम एकदम नकार देते हैं। जब पांच संवाद है ना किसी चीज में, तो किसी संवाद को नकारेंगे तो फिर एक तरह की गलती नहीं दूसरी तरह की गलती हो जाएगी। अभी वो उद्यम को नकार रहा है तो पांच संवाद में से पुरुषार्थ नामक संवाद को नकार रहा है, और हम कह देंगे निमित्त कुछ नहीं होता तो हम निमित्त नामक संवाद को नकार रहेंगे, एक न एक गलती हो जाएगी ना। तो पंडित जी कहते हैं अनेक कारण चाहिए, तो कर्म वाला कारण कर्म में चलेगा, हम उसका कारण निषेध करते हैं, लेकिन तेरे हाथ में क्या कारण है, उद्यम जो पुरुषार्थ वाला जो पॉइंट है वो तेरे हाथ की बात है, इसलिए हम तेरे से पुरुषार्थ करने के लिए कहते हैं, उद्यम करने के लिए कहते हैं, कर्म को दूर करने का उद्यम करने के लिए हम तेरे से क्या कह रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि तुम राग को दूर करने का उद्यम करो, उद्यम क्या है वो हम बताएंगे, ख्याल में ना। तो क्या यहां एक कार्य होने में अनेक कारण चाहिए, उनमें जो कारण बुद्धि पूर्वक हो उन्हें तो उद्यम करके मिलाए और अबुद्धि पूर्वक कारण स्वयं भी मिले तब कार्य सिद्धि होती है। जैसे पुत्र होने का कारण बुद्धि पूर्वक तो विवाह आदि करना है और अबुद्धि पूर्वक भवितव्य है, वहां पुत्र का अर्थ ही विवाह आदि का तो उद्यम करे और भवितव्य स्वयं हो तब पुत्र होगा। उसी प्रकार विवाह दूर करने का बुद्धि पूर्वक तो तत्व विचार आदि है और अबुद्धि पूर्वक मोह कर्म के उपसमादिक है, सो उसका अर्थ ही तत्व विचार आदि का तो उद्यम करे और मोह कर्म के उपसमादिक स्वयं हो तब रागादिक दूर हो। आगे ना मर्म की बात कितना बढ़िया उदाहरण है, किसी को पुत्र की इच्छा है मेरे को पुत्र हो गए, करोड़ों की संपत्ति है होती है ना, भाई अभी किसी सेठ के एक ही बच्चा है, अब उस बच्चे के फिर बच्चे नहीं होते तो वो सेठ सेठानी बच्चा बच्चे की पत्नी सबको बहुत बहुत अपने होना चाहिए ना कोई उत्तराधिकारी कोई ना कोई होना चाहिए, बहुत इच्छा होती है। तो उसके कहते बुद्धि पूर्वक उपाय तो वो क्या कर सकता है, वो अपने बेटे का विवाह करे और क्या करे, बस बेटे का विवाह कर दे। अब वो कहे नहीं नहीं वो तो आप क्या करें, यदि होना होगा तो हो जाएगा, विवाह से क्या मतलब है, विवाह नहीं होना होगा तो नहीं विवाह के हो जाना होगा तो नहीं होना होगा तो नहीं होगा, ऐसे ही मूर्खता नहीं बनती है ना। वो बुद्धिपूर्वक तो उसका विवाह करेगा और फिर भवितव्य में होना होगा तो हो जाएगा और नहीं होना होगा तो नहीं होगा। तो भवितव्य में हमारी कुछ चलती नहीं है, लेकिन ये जो निमित्त है जिसे अपन बोलते हैं जो विवाह करने की प्रक्रिया, ऐसे ही हमें राग को दूर करने में क्या है पांच कारण, उन पांच की जाने दो, ये दो को उन्हें मुख्य रूप से ले रहे। तो वो कहते हैं तत्व का चिंतन, ये अध्ययन मनन चिंतन जो अपन कर रहे हैं ये तो है बुद्धिपूर्वक उपाय, तो ये तो हम करें, और कर्म का उपशम वो है अबुद्धिपूर्वक, कैसा हमने इतनी मेहनत करी और कर्म का उपशम नहीं हुआ तो काम नहीं होगा। कि अब जहां तेरी चलती नहीं है, जहां तेरी बुद्धि काम नहीं करती है, अब उसके बारे में काय को सोचना, बोलो। जैसे कि किसान का है कि वो फसल आता होता है ना हर साल आषाढ़ के महीने में, खेत को जोतना, उसको वो खेत तैयार करके रखना, अब बरसात होगी तो उससे आना जाएगा, कैसा अब मैं बरसात करने के लिए क्या करूं, मैं सब तैयारी कर ली, कुछ नहीं तुम अपनी तैयारी कर, बरसात होगी तो हो जाएगा, बरसात तो होती, बरसात में तुझे को कुछ नहीं करना है, ख्याल में है ना। वो ये कहता है बरसात मेरे हाथ में नहीं है तो फिर मैं खेत को ही क्यों जोतूं, फिर मैं बोए क्यों, फिर मैं उसकी तैयारी क्यों करूं। तो उद्यम निश्चय नय का कथन पढ़कर वो निरुद्यमी हो जाता है। तो पंडित जी कहते हैं उद्यम करे, क्या करूं फिर मैं क्या करूं, कि तत्व विचार ताते जिन वर कथ तत्व अभ्यास करीजिए, आगे देखो तत्व विचार की महिमा, यानी मोहादिक का उपशम करने को, राग को दूर करने का, मिथ्यात्व को दूर करने का क्या उपाय बताया इसमें, बोलो पन्नालाल जी साहब, कि एक तत्व विचार ही बुद्धि पूर्वक उपाय है, बाकी और पांच संभाव हैं उनका हम निषेध नहीं करते हैं, लेकिन हमारे हाथ की जो बात है हम वही कर सकते हैं ना, इसलिए उपदेश तत्वाभ्यास के लिए दिया जाता है। जैसे मान लीजिए अपन को यहां पर बहुत जरूरी काम से यहां दिल्ली जाना है, तो हमारा तो बुद्धिपूर्वक उपाय ये है कि हम रेलवे स्टेशन जो गाड़ी जाती है उस समय पे रेलवे स्टेशन पहुंच जाए। अब बाद में गाड़ी लेट आएगी और गाड़ी में हम बैठ गए और फिर रस्ते में पड़ी रहेगी, अब उसके ज्यादा विकल्प करने से क्या फायदा है, सावधानी काय के प्रति रखना है कि अपने घर से लेट ना हो जाए और गाड़ी ना निकल जाए। गाड़ी निकल गई तो फिर नहीं, मैं अदालत भी इस बात को मानती है, अदालत में पेशी होती है ना किसी गांव की, और वो गाड़ी आती है और वो यदि गाड़ी समय पे आई है और वो कहेगा मेरी गाड़ी चूक गई साहब तो नहीं माना जाएगा, लेकिन वो गाड़ी 6 घंटे लेट हो जाए, अब वही गाड़ी के अलावा दूसरा कोई साधन नहीं है आने का, तो मानेंगे कि हाँ ठीक है तुम गाड़ी नहीं आई, गाड़ी नहीं है, लेट होगी तो नहीं आ पाए तुम, तो उस बात को कंसीडर करते हैं कि नहीं करते हैं? तुम्हारी गलती को कंसीडर नहीं करेंगे। तो ऐसे ही कहते हैं तत्व का विचार करना चाहिए चिंतन मनन उसे, उसमें लगाना चाहिए प्रसाद पूर्वक, तो वो लगता नहीं है, वो तो बस पड़ा रहता है, आलस को पोसता रहता है। इसलिए यहां ऐसा कहते हैं कि जैसे विवाहादिक भी भवितव्य के, वो हाँ फिर वो तर्क लगाता है ना कि विवाहादिक भी तो भवितव्य के अधीन है, उसने कहा था विवाह तो तुम अपने बुद्धिपूर्वक करो और भवितव्य में होगा तो बच्चा हो जाएगा, तो फिर विवाह को हम क्या कहें, वो भी भवितव्य में होना होगा तो हो जाएगा, तो तत्व विचार ही तो भवितव्य के अधीन है, वो तत्व विचार होना होगा तो हो जाएगा, वो समझे ना, उसको भी वो सब भवितव्य पे टालता है क्योंकि उसे कुछ करना नहीं है। उसी प्रकार तत्व विचार आदि भी कर्म के क्षयोप समाधि के अधीन है, इसलिए उद्यम करना तो निरर्थक ही है। देखो पहले प्रश्न में भी वही था, उद्यम करना निरर्थक है, दूसरे प्रश्न में वही है, उद्यम करना निरर्थक है। ज्ञानावरण का तो क्षयोपम तत्व विचार आदि करने योग्य तेरे हुआ है, इसलिए उपयोग को वहां लगाने का उद्यम करते हैं। असंगी जीवों के क्षयोपम नहीं है तो उन्हें किस लिए उपदेश दें, करते हैं माने कराते हैं। वो कह रहे पंडित जी कि तुम क्यों बहाना बनाता है, तू तत्व का विचार कर सके इतना क्षयोपम तेरे को है। वो कहता है कर्म का क्षयोपम नहीं हो तो हम तत्व विचार कैसे करें, है ना, कर इतना कर्म का क्षयोपम तेरे को है इसलिए तेरे से कह रहे, और असैनी पंचेंद्री के उतना क्षयोपम नहीं है, एक इंद्री आदि के उतना क्षयोपम नहीं है तो हमने उनसे कभी नहीं कहा। गुरुदेव इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण देते थे, वो ये कहते थे कि अपने घर में 500,000 का हाथी बनाओ तो उससे नहीं कहते हैं कि एक गिलास पानी लाना, लेकिन 8 वर्ष की कन्या हो तो उससे कहते हैं बेटा एक गिलास पानी लाना। कि क्यों, कि समझदार लोग उसी से कहते हैं जो कर सकता है, क्योंकि वो हाथी के बस की वो बात नहीं है, समझ भी जाए तो भी कि वो एक गिलास पानी घड़े में से भर करके आपको ला करके पिलाने पीने को दे दे, और कन्या के बस की है। तो ऐसे ही सर्वज्ञ भगवान अपन से उद्यम करने के लिए कह रहे हैं सैनी पंचेंद्रियों से, भव्य जीवों से, तो उसका मतलब यह है कि हम उद्यम कर सकते होंगे तभी कह रहे, यदि हम उद्यम नहीं कर सकते होते और वो कहते तो वो कम से कम उस पिता के बराबर भी समझदार निषिद्ध नहीं होंगे कि जो अपनी 8 वर्ष की कन्या से एक गिलास पानी लाने के लिए कहता है, है ना। भगत तेरा ज्ञानावरणी कर्म का इतना क्षयोपम है इसलिए तुमको ये बात हम कह रहे हैं, यदि नहीं होता तो हम कहते ही नहीं, वो कहते ही नहीं हम। तब वह कहता है होनहार तो वहां उपयोग लगे, बिना होनहार कैसे लगे। देखो कि ठीक है भवितव्य तुम कह रहे हो कि कर्म का क्षयोपम है, लेकिन हमारी होनहार ही खोटी हो तो हमारा उपयोग कैसे लगे। मैंने कहने का अर्थ यह है कि वो प्रयत्न करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वह निश्चयाभास के क्या का सबसे बड़ा ये दुर्गुण है। यदि ये दुर्गुण नहीं हो तो समझ लो ना कि वो निश्चय का सिद्धांत उसका सही है। ये पहचान लेना कि यदि वो सही बात नहीं होगी तो उसमें इसकी प्रवृत्ति ऐसी हो जाएगी, है ना। यदि ऐसा सिद्धांत है, पंडित जी कहते हैं, तो सर्वत्र ही किसी प्रकार का उद्यम मत करो। तुम ये कह रहे हो कि भाई हमारे होनहार होगी तो ही उपयोग लगेगा उद्यम करने में, तो तुम फिर खाने में पीने में कमाने में नहाने में धोने में तो खूब उद्यम करते हो, वहां भी होनहार होगा तो हो जाएगा ऐसा मान के बैठो। इसका मतलब है जिसमें तेरी रुचि है उसमें तो तू सब करता है, और जिसमें तेरी रुचि नहीं है उसमें होनहार का तू बहाना लेता है। क्योंकि तू सब जगह ऐसा ही कर, बिल्कुल ऐसा निश्चल होकर बैठ जा, न खाना खाने जा, भवितव्य में होगी तो हो जाएगा खाना, वहां तो बराबर जाता है, और 2 मिनट लेट हो जाए खाना तो आग में पूरा हो जाता है। अपन को देर हो जाए फिर देखो क्यों, कि आपने जो कहा वो उसे मैंने जाना ही नहीं, तुम्हें पानी ला गया वो कह दूंगा बोला क्योंकि कोई जानता ही नहीं है ना, पर को और आपको एक गिलास पानी चाहिए, उसको तो मैं जानता ही नहीं हूं ना, मजाक करते हो, तत्व ज्ञान में मजाक नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, फिर लेकिन ये तत्व ज्ञान तो है ना, इसे मजाक की क्या बात है? इतना ही है कि एक आदमी जरा मुंह फुला के बात करता है, एक जरा प्रफुल्ल चित्त से बात करता है, इसमें मजाक कहां हुआ? ये तो तत्व ज्ञान ही हुआ ना। मेरे कहने का अर्थ यह है कि वो नहीं जानने और जानने की बात, वही तुम कह रहे ना नहीं जान रहे हो, उसी बात को तुम्हारे व्यवहारिक काम में कहेगा तो तुम एकदम नाराज हो गए, और तत्व तो जानने कह दोगे तो जानते ही नहीं, तो जानने की जरूरत ही नहीं, ऐसी है ना। उद्यम करने के लिए, धर्म का उद्यम करने के लिए मना कर देते हो, और लोक में जरा भी होनहार होकर चली जाएगी गाड़ी, तुम जाओ जल्दी जाओ लेके आओ ऐसे जाओ, ऐसा आकुलता नहीं करो, होनहार होगा जाना होगा तो चले जाएंगे, तो फिर देखो तुम इसने सहवासी को कितना आगे उगला होता है ना। देखो तू खान पान व्यापार आदि का तो उद्यम करता है और यहां होनहार बतलाता है, इससे मालूम होता है कि तेरा अनुराग यहां नहीं है। सच्ची बात तो जी है, मानादिक से ऐसी झूठी बातें बनाता है, ये पहला सर्टिफिकेट है पंडित जी ने दिया है किसको, निश्चयभाषियों को, कि तू अभिमानी है इसलिए तू ऐसी झूठी बातें बना रहा है, अभिमानी है और झूठा है, दो बात है पंडित जी ने किनते जाना है ना। तथा अब देखिए अगला पॉइंट है, ये तो रागादिक की बात हो गई, ये तो भाव कर्म की बात हो गई, भाव कर्म से रहत मानता है ना वो आत्मा को, उसके लिए कहा कि वर्तमान में राग देश मोह रूप भाव कर्म हैं, उन्हें जो आत्मा से मैं नहीं है कहा है वो तो पर्याय को गौण करके कहा है। अब तू पर्याय को तो खड़ी रखता है, ध्यान देना, पर्याय को खड़ी रखता है, पर्याय को तो मुख्य रखता है और राग देश को मानता नहीं है। जिस अपेक्षा से आत्मा में राग द्वेष नहीं है ना, उस अपेक्षा से आत्मा में पर्याय ही नहीं है, वो तो पर्याय से भिन्न है, वो तो उस आत्मा की बात है ना जो पर से भिन्न और पर्याय से भिन्न है, वो पर्याय के साथ अलग हुए हैं कि पर्याय तो तेरे में रह गई और राग द्वेष अलग हो गए। वो तो सिद्ध दशा में ऐसा होता है कि पर्याय रह जाए तो वितराग पर्याय आ जाएगी, ये तो पर्याय को तूने अपने से जुदा कहा तो पर्याय में होने वाले राग द्वेष जुदे हो गए। तथा कर्म नो कर्म का संबंध होते हुए आत्मा को निर्बंध मानते हैं, ये तीसरी गलती है। पहली कौन सी थी, केवल ज्ञान नहीं है और केवल ज्ञान सहित मानता है अपने को, दूसरी क्या थी, रागादिक हैं और रागादिक से रहित मानता है, और तीसरी बात क्या है, कर्म और नो कर्म, ज्ञानावरण आदि कर्म और नो कर्म माने शरीर आदि, इनके संबंध से रहित अपने को मानता है, जबकि देह में है विद्यमान है, ज्ञानावरण आदि कर्मों का, आठ कर्मों का बंध उसके सब मौजूद है, फिर भी इनसे निर्बंध मानता है। और वो और ये गलती शास्त्र पढ़ के हुई है, क्योंकि 15वीं गाथा पढ़ ली, 14वीं गाथा पढ़ ली उसने, क्या आत्मा अवध्य स्पष्ट है, आत्मा को तो कर्मों ने आज तक तो छुआ ही नहीं, बंधने की तो बात बहुत दूर की। मैंने शास्त्र को पढ़कर हुई ना, जो जीव जैनी है जैन शास्त्रों का अभ्यास करते हैं श्रद्धा रखते हैं उनकी बात है, वो शास्त्र में से पढ़ लिया कि आत्मा तो कर्मों से बंधा ही नहीं है। जब मान लो कि सचमुच किसी को बांध दें, जकड़ दें, हाथ में हथकड़ियां बेड़ी डाल दें, तो वो ऐसा मान लेता है कि मैं तो बंधा ही नहीं हूं, मैं तो स्वतंत्र हूं, ऐसा मानता है, तो ये मानता है मैं 24 घंटा के मैं बंधा हूं। उस बंधे हुए आदमी को भी कोई समझदार ये समझाए कि देख भाई अभी तेरा ऐसा है, तो राजा है, ये बंधन में डाल दिया, एक ये तो समझ लो कि छूटने वाला नहीं है, लेकिन तू उसको तो इसमें से दिमाग में से निकाल दे, ये तो पुण्य पाप का खेल है, तू तो अपने आत्मा का विचार कर, और फिर वो कहेगा उस आत्मा का विचार करके तू देह ही अपनी नहीं है, तो देह से अपने को जुदा किया ना, तो वो उन बंधनों से तो देह बंधी है ना। तो हमने कहा कि देह ही तू नहीं है, तू बंधा नहीं है। जब बंधा नहीं है कहा तो शरीर नहीं बंधा है, ऐसा नहीं कहा बन्नालाल जी। उस शरीर में बंधन है, उस शरीर ही मैं नहीं हूं और मैं उससे जुदा हूं, ऐसे आत्मा को अबंध कहा है। ख्याल में आए ना। अब तू शरीर को अबंध मान लेता है। अच्छा, वो अबंध मान ले तो अबंध मान के वहां से भागने की कोशिश नहीं करता है। वो जानता है कि ये बंधे, भग नहीं सकता, वो भाग जाए ऐसा अबंध नहीं है। सम्यक दृष्टि ज्ञानावरण आदि कर्मों से मैं बंधा नहीं हूं, शरीर से मैं बंधा नहीं हूं, जुदा हूं, ऐसा मानने पर उस शरीर में से निकल के भागने की कोशिश नहीं करता, आत्महत्या नहीं करता। क्यों? अच्छा, मैं आपसे एक बात और पूछता हूं कि कोई सम्यक दृष्टि मानता है कि मैं कर्मों से नहीं बंधा हूं, है ना, मैं देह से नहीं बंधा हूं, मैं ये बेड़ियां, मान लो बेड़ियां से बंधा हो, जेल में बंधा हो, ये सब मानता है ना वो। लेकिन फिर हम उससे कहें कि साहब आप नहीं बंधे हो तो चलो, मैं कैसे जा सकता हूं? वो उसी वक्त आपको एक कहता है कहने कि मैं कैसे जा सकता हूं, बेड़ियां बंधी है, मैं कैसे जा सकता हूं? कहता कि नहीं कहता, बोलिए आप। तो उस वक्त जब वो ये कह रहा है कि मैं कैसे जा सकता हूं, मैं बंधा हूं, तो उस वक्त वो अपने आत्मा को अबंध मान रहा है कि नहीं मान रहा, मैं बताऊं? उस वक्त भी वो अपने आत्मा को अबंध मान रहा है कि नहीं? ऐसे और भी है जो ये कहता है स्त्री पुत्र मकान जायदाद कोई किसी के नहीं है। जब वो ऐसा कह रहा है तो उसी समय वो ये मान रहा है कि नहीं कि ये स्त्री ये पुत्र मेरे हैं? तब तो ये कह रहे कि ये जो मेरे स्त्री पुत्र हैं ये मेरे नहीं है। वो ऐसा नहीं है नहीं कि जिसके नहीं है, और वो कहता है कि मैंने शादी नहीं की, मेरी कोई पत्नी नहीं है, मेरा कोई पुत्र नहीं है, उस जैसा कहना नहीं है इसका। वो व्यवहार की स्वीकृति उसके ज्ञान के एक कोने में गौण रूप से पड़ी है, और उसके बाद वो ये कहता है कि कोई नहीं है मेरे। क्यों? ये निश्चयभाषी का सबसे बड़ा डिफेक्ट ये है कि अंदर की वो स्वीकृति उसके ज्ञान में से निकल गई है, और वो सचमुच ऐसा करने लगता है जैसे बेड़ियां हाथ पैरों में बनी हुई हैं और मैं तो बंधा ही नहीं हूं, और ऐसा मान के वो चलने लगता है। चलने लगता है तो चल तो पाएगा नहीं। जो स्थिति होगी ना, ऐसी निश्चयभाषी की परिस्थिति होती है। देखो, तथा कर्म और नो कर्म का संबंध होते हुए आत्मा को निर्बंध मानते हैं, सो इनका बंधन प्रत्यक्ष देखा जाता है। ज्ञानादिक का घात देखा जाता है, शरीर द्वारा उसके अनुसार अवस्थाएं होती देखी जाती हैं, फिर बंधन कैसे नहीं है? यदि बंधन ना हो तो मोक्ष मार्गी इनके नाश का उद्यम किस लिए करे? यदि कोई कहे कि शास्त्रों में आत्मा को कर्म नो कर्म से भिन्न अबद्ध स्पष्ट कैसे कहा है? पंडित जी ये जो प्रश्न कर रहे हैं और ये कह रहे हैं, तो उनने उस वक्त समय सार नहीं देखा है, ये बात नहीं है। देखो कैसी गजब की बात है कि वो शास्त्र के प्रमाण पंडित टोडामल जी सब शिष्य के मुख में रखते हैं, उत्तर देने में वे कोई शास्त्र का प्रमाण बहुत कम प्रयोग में लाते हैं। दुनिया में ऐसा होता है कि प्रश्नकार प्रश्न करता है और उत्तर देने वाला शास्त्रों के आधार दे दे करके उत्तर देता है। टोडामल जी के मोक्ष मार्ग प्रकाशक की यह विशेषता है कि उनका जो प्रश्नकार है वो प्रश्न करता है तो वो शास्त्रों के प्रमाण पेश करता है, और पंडित टोडामल जी जो उत्तर देते हैं उसमें कोई शास्त्र का प्रमाण पेश नहीं करते। ऐसा क्यों होता है? मैंने अपने शोध प्रबंध में ये बात पर इनलार्ज की है टोडामल जी की इस विशेषता को, और उस पर रिसर्च की कि एक ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ कि टोडामल जी का जो श्रोता है वो शास्त्रों का पाठी है, वो विद्वत्ता में कोई कमी नहीं है, उसने समय सार और गोमट सार और पंचास्तिकाय और धबला और जय धबला और कर्मकांड सब पढ़े, यदि एक ऐसा प्रश्न आए कि भाई मोक्ष मार्ग प्रकाशक का जो प्रश्नकार है उसका चरित्र चित्रण कीजिए, क्या अथवा वह कितने शास्त्रों का अभ्यासी है, कितना शास्त्र इसमें पड़े हैं ये निकालो, क्या तो प्रश्नकार के मुख में जितने शास्त्र के उद्धरण हैं उनके आधार पर आप लिस्ट बना सकते हो कि वो इतने शास्त्रों का पड़ा है। फिर देखना वो उतने शास्त्रों का पाठी वो होगा कि तुम 5 साल लेके पढ़ जाओगे और बहुत तो सारी जिंदगी में भी उतने शास्त्र नहीं पढ़े होंगे। वो 5वें अध्याय के भी उद्धरण देख करके तो मेरे पैरों के नीचे जमीन खिसकी इस बात के लिए कि कितने उद्धरण और किस बारीकी से। कोई ऐसा कहता था कि सब वो मूल में मिलते नहीं है, मैंने कहा इसमें क्या दम है, वो श्लोक बोल रहे हैं, श्लोक थोड़ी उन्होंने बना लिए, वो वेद के मंत्र बोल रहे हैं, वेद के मंत्र उन्होंने बना लिए, वो भी सब नकली बना लिए टोडामल जी ने, वो प्राकृत की गाथा बोल रहे हैं, माने वो उसी भाषा के जो और हैं, आप मिलान करके देखिए उन ग्रंथों से कि उस जो श्लोक की छंद की भाषा उसके बाकी श्लोकों से मिलती जुलती है कि नहीं है, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि उसका है कि नहीं है। अब समस्या यह है कि अब वो क्यों नहीं मिलते, तो मैं आपसे बात पूछता हूं कि जैसे कि अपने पूज्य गुरुदेव श्री ने प्रवचन किए और भी छप गए, अब बाद में लोगों ने एक एक बात निकाल निकाल करके बहुत झगड़ा किया 40-45 पॉइंट के पुण्य को भ्रष्टा कहा और ये कहा, निकाल निकाल पढ़ते छाप छाप के बांटे गए नहीं सारे देश में। बात तो वो सत्य थी, गलत तो नहीं थी, लेकिन अब व्यर्थ में विरोध हो रहा है और इतना सा लेन हटाने में पुण्य भ्रष्टा है, पुण्य की जगह पुण्य हे है, इतने में यदि समाज संतुष्ट होती है तो हमें क्या तकलीफ है, क्योंकि वो भ्रष्टा जैसी हे है कि नाक जैसी हे है कि हाथ जैसी हे है, इसे क्या फर्क पड़ता है, सवाल तो हे का है ना, और हमने भ्रष्टा जगह से काट के अगले एडिशन में हे कर दिया, सुधार दिया, क्यों नहीं सुधारे तो कहते सुधारे नहीं, सुधार दे तो कहते शास्त्र सुधार दे, क्या करें, बोले बाबू साहब तो अगले एडिशनों में अपने वो सुधारें कि नहीं सुधारें, सुधार देते ना, अपन ने भी सुधारे हैं ना, कौन कि जिन्हें व्यर्थ का झगड़ा खड़ा होता है पुण्य को एक कितना ही कहो लेकिन कोई एक हीन शब्द आ गया है उपमा का कहीं तो अपन निकालते कि नहीं निकालते हैं, इसमें भी संशोधन करते हैं कि इसमें भी निकाल दो भाई ये बात नहीं देते रही दो, निकाल देते कि नहीं निकाल देते हैं? तो जब ये बात टोडामल जी ने कही और सामने वाले को सामने बार बार आई और उसे निरुत्तर होना पड़ा कि तुम्हारे ही शास्त्रों में ये बात लिखी है तो द्वारा जब वे लिखाए गए होंगे उनने भी निकाल दिए होंगे, उसमें क्या है माने वो बहुत नेचुरल है, ऐसा नहीं कि उन्होंने बहुत कोई उस्तादी करी कि गलती करी कि अपन को बुद्धू बनाया, ऐसा कुछ नहीं है। जो सामने प्रतिद्वंदी वाले है उस प्रतिद्वंदी वाले को मसाला हमारी किताबों में से मिले तो समझदार आदमी तो यही करेगा कि वो मसाला को निकाल दे, इसलिए उसमें कुछ दम नहीं है, जो उसकी जो प्रकृति है जो चीजें हैं वो ऑटोमेटिक अपने आप इस बात की साक्षी हैं, कोई उनने ऐसा नहीं कहे वहां ऐसा कहा है ऐसा कह के नहीं छोड़ दिया है, उनने श्लोक लिखा ये क्रूतो ये दाता ऐसा श्लोक है ऐसा मंत्र है ऐसा ये है, तो कभी कभी पूरी पूरी लेने लिखी है वो वेद के सूत्र लिखे उसमें नामिनाथ का नाम मंत्र, तो उनने वो पढ़े होंगे ना, अपन ने तो वेद देखे ही नहीं आज, तो हमारे उनका श्रोता कितना शास्त्रज्ञ है स्वाध्यायी है उसमें तो हम पासंग नहीं बैठते हैं, उसके श्रोता के टोटे मल के श्रोता के पासंग में नहीं बैठते हैं हम, ऐसे टोटे मल की आलोचना करने वाले लोग हैं ना वे एक दफे देखें तो टोटे मल जी के ज्ञान के सामने वो कितने बौने हैं, और वो उस जमाने में जब ऐसे शास्त्र थोड़ी थे तुम्हें छपे छपा हर जगह उपलब्ध थे, एक शास्त्र की प्रति जो आज को 5 रुपए में मिल रही है वो 5 लाख में मिलती थी, समझ लेना 5 लाख माने उस वक्त ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक है ना इसकी एक कॉपी करे तो एक विद्वान इसको लिखे, अपने हाथ से शुद्ध सात्विक बिल्कुल बढ़िया, मैं कैसे नहा धोकर दुपट्टा पहनकर मंदिर में बैठकर, ऐसे नहीं कि तुम ताजे से जैसे बैठ करके शुद्ध कपड़े पहनकर, तो वो जितने दिन इस शास्त्र को लिखने में लगाए उतने दिन का उसका खाने पीने का, उसके बाल बच्चों के खाने पीने का, उसके मकान का, रहने का, देने का, उसके बेटियां हो तो उनकी शादी मादी का, ये सारी व्यवस्था तो उसकी आजीविका तो वो ही थी ना, तो उसके सारी व्यवस्था उसी में से होती होगी कि नहीं? और वो कोई साधारण आदमी तो है नहीं, वो तो बहुत टॉप का पढ़ा लिखा आदमी है। तो एक एक आईएएस ऑफिसर का, समझे ना, जितनी जो आवश्यकताएं हैं वो उतना खर्चा उसका मारो आप। छह महीना लिखने में लग गए तो छह महीना में जो कलेक्टर की तनख्वाह है उतने का एक मुख्यमंत्री प्रकाश पड़ता था। और उस जमाने में इतने ग्रंथों को उपलब्ध करना और उनको पढ़ना, और एक साधारण आदमी दूसरे के यहां मुनिमी करते हो और उनमें के वो प्रमाण, फिर ऐसा नहीं फटाफट पेज नंबर निकाल लो सूची देख लो, कुछ नहीं होता था, उसे निकालना, उन्हें याद याद रह जाए और उनको इसमें लिख देना, कि कितना कठिन काम था। उसे आप कल्पना करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि क्या है, है? वो कहता समय सार में ऐसा लिखा है, अबद्ध स्पष्ट लिखा है आत्मा को, इसलिए मैं मानता हूं कर्मों ने आत्मा को छुआ ही नहीं है। यानी उनका श्रोता इतना बड़ा विद्वान है, जब मैं ये प्रशंसा करता हूं और उसमें मैंने लिखा अपने शोध प्रबंध में, तो वहीं एक प्रश्न सहज ही खड़ा हुआ, इतना बड़ा विद्वान है तो फिर ये इसकी समझ में क्यों नहीं आता, टोडामल जी को बार बार समझाना क्यों पड़ता है? तो उसमें एक ही कमी है टोडामल जी के श्रोता की, जो मैंने बोला ना कैरेक्टर बहु श्रोतज्ञ है, लेकिन एक कमी है कि जो वो जनवाणी का कथन है जहां जिस अपेक्षा से कहा गया है वो उसको सही सेट नहीं कर पाता, अकेला उसने नए चक्र नहीं पढ़ा। एक कितनी कैली है वो नयों की अपेक्षा कहां कैसी लगना चाहिए, है? क्यों तो वो ये नहीं जानता है। इतनी सी कमी के कारण वो उसको इतनी बार बार प्रश्न खड़े होते हैं और टोडामल जी उसको बार बार जवाब देते हैं। वो और कुछ नहीं, जवाब उनके जवाब में एक ही है कि तू इसकी अपेक्षा तो भैया ए थी, जो ये कहा है ना राग द्वेष से रहत उसकी अपेक्षा ए है, कर्म बंधन से रहत कहा उसकी अपेक्षा ए है, फलाने से कहा उसकी अपेक्षा ए है, उनने अपेक्षा ही बताई उत्तर में, अपेक्षा का स्पष्टीकरण ही टोडामल जी ने किया है, बाकी सारी बातें उनका जो प्रश्नकार है उसकी तरफ से आई है। और ये अमरचंद में भी ये विशेषता थी, जब वो शिष्य कहता है समय सार में क्या कहता है कि भाई तुम तीर्थंकरों की स्थिति जो है वो सब देह के आधार पर है, यदि तुम देह के गुणों को आत्मा को एक नहीं मानोगे तो स्थितियां सब झूठी हो जाएगी, तो सारा स्थिति साहित्य झूठा हो जाएगा, इसलिए तुम देह को ही आत्मा मान लो। वहां शिष्य ने ऐसे लिखा ना, बिल्कुल एक भाषा है क्या? नहीं। तब उन्होंने क्या जवाब दिया? बिल्कुल एक शब्द, नैवम नय विभाग अनुभग्योसी वस्कदम, ऐसा नहीं है, माने सारी स्थिति साहित्य बेकार नहीं होगा। क्यों? फिर तुम नय विभाग नहीं जानते हो इसलिए तुम्हारे चित्त में ऐसा प्रश्न खड़ा हुआ है, और वो नए विभाग उनने स्पष्ट कर दिया, ये व्यवहार नए से देह और आत्मा एक है ही, और ये सब स्थितियां व्यवहार नए की हैं, और निश्चय नए से नहीं है, और ये निश्चय नए से स्थितियां भी नहीं है, तो निश्चय नए की स्थिति कौन है? तो उन्होंने बताया कि निश्चय स्थिति तो ये है, क्योंकि निश्चय में एक दूसरे के साथ में बंध बंधक भाव होता ही नहीं, एक वंदना करे और दूसरे की वंदना करे ऐसा निश्चय में होता ही नहीं, निश्चय में तो हम स्वयं महान है, किसकी वंदना करें? वो वंदना तो पर्याय करती है, निश्चय में तो मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, वो झुकने वाली पर्याय तो मैं हूं ही नहीं, मैं तो वो हूं जिसमें पर्याय झुके, जैसे कोई वंदना करे मैं तो वो हूं, मैं वंदना करने वाला हूं ही नहीं, बंद बंधक भाव जो है वो व्यवहार में होता है, निश्चय में नहीं होता है। तो इतनी बात है, तो देखो यहां कहता है वो उत्तर, संबंध अनेक प्रकार के हैं। अब देखो इस समय 14वीं गाथा का स्पष्टीकरण, वहां तादात्म संबंध की अपेक्षा आत्मा को कर्म नो कर्म से भिन्न कहा, क्योंकि द्रव्य पलटकर एक नहीं हो जाती, और इसी अपेक्षा से अबद्ध स्पष्ट कहा। तादात्म संबंध नहीं है, इस अपेक्षा से अबद्ध स्पष्ट कहा। तथा निमित्त नैमित्त संबंध की अपेक्षा बंधन है ही, उनके निमित्त से आत्मा अनेक अवस्थाएं धारण करता ही है, इसलिए अपने को सर्वथा निर्बंध मानना मिथ्या दृष्टि है। वो दृष्टि का मिथ्यात्व है। देखो सर्वथा निर्बंध मानना में वो समय सार का पे कमेंट्स कर रहे, समय सार की गाथा पर कमेंट कर रहे, उन्हें समय सार नहीं पढ़ा था कि समय सार में लिखा है, शिष्य ने साफ कहा था, सबसे बड़ा दाव पे लगा दिया उसने, कुंद कुंद जैसे आचार्य और संबंधभद्र जैसा समय सार जैसा ग्रंथ, उसको दाव पे लगाया शिष्य ने। अब बोलो तुम क्या कहते हो दिगंबरों के सबसे बड़े आचार्य को, तो उन्होंने कह दी क्या कहते हैं, वो उनकी अपेक्षा तो ये थी, तादात्म संबंध नहीं है, सिर्फ इतना देखो कर्म से आत्मा बंधा नहीं है। इसका अर्थ टोडामल जी क्या कह रहे, आत्मा और कर्म में तादात्म संबंध नहीं है, सिर्फ इतना अर्थ है, और बंधा है इसका कितना क्या अर्थ है कि उन दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उसका ये अर्थ है। देखो कितना सीधा सरल, सरलता से जवाब आ गया है, ऐसा नहीं बहुत भारी हो, यहां हमारे 10 प्रमाण पेश कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, धवल में ये लिखा, फलाने में ये लिखा, क्या 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 दे रहे हैं, तादात्म संबंध का निषेध किया, इतनी सी बात है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो जाता, कर्म के बंधन होने से आत्मा कर्म रूप नहीं हुआ और कर्म आत्मा रूप नहीं हुए, कर्म जीव अजीव रहा और आत्मा जीव रहा। वो सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में आता है ना, जीवो ही तावत कृमिनी मात परिणाम ऋतुबद्धमानो जीवा नो अजीवा, अजीवो भी कृमिनी मात परिणाम ऋतुबद्धमानो अजीवा नो जीवा, बस इतनी सी बात है कि अजीब अजीब जीव जीव है, अजीब अजीब है, माने तादा कर्म से आत्मा बंधा नहीं है, इसका मतलब आत्मा और कर्म में तादात्म संबंध नहीं है, और तादात्म संबंध माने ज्ञान और आत्मा जैसे एक होते हैं, ऐसा ऐसा संबंध नहीं है, इतनी सी बात है, कर्म जुदे और आत्मा जुदे, वो दो द्रव्यों की भिन्नता के अलावा और कुछ नहीं है, वहां समझे ना, दो द्रव्यों की भिन्नता की बात ही है और कुछ नहीं है। देखो यहां कोई कहे कि हमें तो बंध मुक्ति का विकल्प करना नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा कहा था, हमें तो विकल्प ही नहीं करना है, हमें तो कहता है, और क्योंकि शास्त्रों में ऐसा कहा, फिर शास्त्र ले जाए, देखो क्या लिखा है, जय जयी बंध मुक्कहु मुड़ई सो बंध यही निबंध, योग सार है, योग सार का भी पढ़ा हुआ है, वो नीचे गाता है ना, जयी बद्ध मुक्कहु मुड़ई से बंध यही निबंध, सहज रूप सही जय रमई ते पावई से विसंत। अब जो उन्हें एक ही लाइन कही, उन्हें याद थी, यानी एक सार उन्होंने पढ़ा नहीं था, एक सार की उन्होंने स्टडी की थी, मैंने उन्हें कंठस्थ याद था, उन्हें बार बार उठा उठा करके किताब निकाल निकाल के देख के थोड़ी संभव था, क्योंकि एक किताबें ऐसी बाइंडिंग वाली नहीं थी भाई साहब, वो बेस्टन में बंद रखी रहती थी, वहां से जाकर के निकाल के लाए, फिर एक एक पेज खोले, फिर एक रखे, फिर उसमें से इतना आसान नहीं था उनको ये चीजें, मान लो बाद में मिला नहीं हो तो मिला लें, लेकिन उनको याद थी कि समय सार में ऐसा कहा और योग सार में ऐसा कहा, कभी कह देते हैं समय सार में कहा, कभी कह देते हैं आत्मख्याति में कहा, कभी कह देते हैं योग सार में कहा, और कभी नहीं भी कहते हैं, कभी कह देते सो ही कहा है, पहले के जमाने में उक्तन चय भरी की पद्धति थी, बस कहा भी है कहा भी है, कहीं भी कहा हो ना कह देते थे। एक बात ऐसी भी थी कि वो सामने उनके जो श्रोता रहते थे ना, वो सब जानते थे कहाँ कहा, वो भी बोलते थे कहा भी है, मैं कहा भी है, और बोले जे त्रिभुवन में जीव अनंत हैं, सब छेड़ाला पड़े हुए हैं, समझा थे कहा हुआ छेड़ाला में कहा, इसलिए वो समझ लेते थे, इसलिए भी कहने की जरूरत नहीं थी। देखो उससे कहते हैं कि जो जीव केवल पर्याय दृष्टि होकर बंध मुक्त अवस्था को ही मानते हैं, उनके लिए ये बात कही है, पर पर्याय दृष्टि है, केवल पर्याय दृष्टि माने द्रव्य दृष्टि उनके ख्याल में ही नहीं है, द्रव्य स्वभाव को ग्रहण नहीं करते, उन्हें ऐसा उपदेश दिया है कि द्रव्य स्वभाव को ना जानता हुआ जीव बंधा मुक्त हुआ मानता है वह बनता है क्या, जो उसकी अपेक्षा ये नहीं है, इससे इसका कोई संबंध नहीं है। क्योंकि हमको विकल्प ही नहीं करना, हमें चिंतमन ही नहीं करना, आत्मा के बंधन की हमें बात ही नहीं सुननी, हमें बात ही नहीं करनी। आजकल ऐसा चलता है कि नरक की बात, अच्छा तुम्हें नरक जाना है क्या, नरक की बात करने का मतलब नरक जाना होता है क्या। एक तो एक बहुत बड़े विद्वान ने बातचीत करते करते कि क्या क्या कि पर को आत्मा जानता है कि नहीं जानता, तुम्हें पर जानने का बहुत रस है, निगोद जाना है ना, इसलिए पर जानने पर के जानने का बहुत रस है। तो स्वपर प्रकाशक है, इसका निर्णय करने के लिए चर्चा करना, इसका नाम पर को जानने का रस है। क्यों गाली गाली उसको, मतलब गाली और निगोद भेज दिया एक सेकंड में। ऐसे वो कहता है हमको बंधन की चर्चा ही नहीं करनी, तेरे चर्चा नहीं करने से जो फैक्ट है वो हट जाएगा क्या। उसको ये पता नहीं है, यदि निश्चय नहीं की अपेक्षा सर्वथा ये मान लें तो संसार है ही नहीं, ऐसा मानना पड़ेगा। वो संसारी जीव मुख जीव दो जो क्या, चारों गतियां नहीं है, राग देश नहीं है, मोह नहीं है, नरक स्वर्ग नहीं है, सब उसे पता ही नहीं है कि तुम उसके मानने का इफेक्ट क्या है। इधर मैंने कहा था, वो कहते कोई कभी बात आती है ना साथ में, हमने मान लिया साहब लिखी होगी, भाई साहब तुम नहीं मानते हो क्या कह रहे हो, तुम नहीं मानते हो इसका अर्थ समझ रहे हो क्या है, एक दफे तुम इसका अर्थ समझ लो तो जिंदगी में कहना भूल जाओगे हम नहीं मानते। क्यों कि ये 24 तीर्थंकर कितने होते हैं, बोले 24, साथ तो तुम मानते नहीं हो, तुमने कैसे जाने बोलो बताओ, बिना शास्त्र के तुम 24 तीर्थंकर सिद्ध कर दो। चक्रवर्ती 12 होते हैं, आदिनाथ हुए थे, उनके बेटे बाहुबली और ऋषभदेव के भरत थे, कह जाए शास्त्र तो तुम मानते नहीं। क्यों एक दफे तुमने शास्त्र से इनकार किया कि शास्त्र में लिखा हम उसे नहीं मानते हैं, तो तुम्हें क्या क्या मानना छोड़ना पड़ेगा इसकी तुम कल्पना करो। तो ये जो निश्चयभाषी व्यवहार है उसके लिए इतना दोष बताए, ये क्या केवल ज्ञान सहित मानते हैं, वो कहते केवल ज्ञान है ना, उस वक्त केवल ज्ञान से सहित मानते हैं, वर्तमान में अमति ज्ञान रहित मानते हैं, ऐसे रागादिक जो सहित हैं उससे अपने को रहित मानते हैं, और तीसरा पॉइंट क्या है कि कर्म से और नो कर्म से भी अपने को बना हुआ मानते हैं, ये निश्चयभाषी का दोष है। ख्याल में आया ना, और अब आगे शुद्ध का क्या वास्तविक अर्थ है तो वो कल अपन इसमें बताएंगे शाम को।
शांति सुधावर सारे दिन वाणी, वस्तु स्वरूप बताए दिन वाणी, वस्तु स्वरूप बताए दिन वाणी, पूरा पर सब दोष रहित पाप क्रिया से शून्य शोध परमागम कहलाए दिन वाणी, शांति सुधावर सारे दिन वाणी, परमागम भाग्यों को अर्पण मुक्ति बधु के मुख का दर्पण, भव सागर त्रेताए दिन वाणी, शांति सुधावर साए दिन वाणी, राज रूप अंगारों द्वारा महावेश पाता जग सारा, सजल मेघ बरसाए दिन वाणी, शांति सुधावर साए दिन वाणी, सत तत् का ज्ञान कराए अचल विमल निज पद दर्शावे, सुख सागर लहराए दिन वाणी, शांति सुधावर साए दिन वाणी, वस्तु स्वरूप बताए दिन वाणी, शांति सुधावर साए दिन वाणी।